पृष्ठ संख्या 238, अध्याय 14। अध्याय शीर्षक है ग आत्मा के अमरत्व की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल। शीर्षक है विषय प्रवेश। जीवन, मूल्य और मृत्यु तीनों विषय इस प्रकार एक दूसरे से ग्रथित हैं कि मानव आदिकाल से ही इनके विषय में विचार करने के लिए बाध्य है। मानव को मूल्यों से परिपूर्ण जीवन के प्रति प्रेम और आकर्षण है, परंतु यही जीवन जब काल कवलित होता है तब उसे निराशा होती है। इस निराशा से बचने के लिए वह अमरता के विषय में विचार करने के लिए बाध्य होता है। वह विचार करता है कि क्या सत्य, सेवा, बलिदान और प्रेम से युक्त जिया हुआ जीवन तिनके के समान नष्ट हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। यदि कोई अर्थ नहीं तो उसने त्याग और नैतिकता से पूर्ण जीवन संघर्षों के बीच क्यों बिताया? जीवन में भौतिक मूल्यों के अतिरिक्त परम मूल्य भी है। यदि इनका कोई महत्व ही नहीं है तो इनके लिए संघर्ष करने की क्या आवश्यकता? क्या विश्व में दैवी प्रयोजन स्वीकार नहीं किया जा सकता? यदि मानव जीवन विनाश तथा संहार के कगार पर ही है और अंधे जड़ तत्व से ही निर्देशित है तो जीवन मूल्यों का फिर कोई महत्व नहीं। मानव के समक्ष जब विनाश, निराशा और मृत्यु ही आती है तो इससे बचने के लिए वह आत्मा में अमरत्व के विकल्प को चुनता है। धर्म दर्शन के विचारकों ने इस विषय पर गहनता से विचार किया है। कुछ विचारकों के अनुसार तो अमरता के आधार पर ही जीवन और जीवन मूल्यों की अक्षुण्णता संभव मानी जा सकती है। W.B. सेल्वी के अनुसार यदि हाफडिंग के शब्दों में यह माना जाए कि धर्म मूल्यों के संरक्षण में विश्वास है तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मूल्य उसमें निहित हैं जो नित्य, अनंत तथा अदृश्य है। यदि वह सत्ता चिरंतन है और उसमें ही मूल्य है तो निश्चित है कि उनको बनाए रखना मानव के लिए महत्वपूर्ण है। संभवतः इसीलिए मानव की धार्मिक चेतना में आत्मा की अमरता की भावना दृढ़ हो गई है। धर्म दार्शनिकों का यह कहना ठीक ही है कि मनुष्य में मृत्योपरांत जीवन सातत्य की आशा उतनी ही सहज, स्वाभाविक और पूर्ण है जितनी कि ईश्वर की धारणा। वास्तव में दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। भावी जीवन आत्मिक जीवन है, मृत्यु के पश्चात आत्मा ईश्वर के निकट जाती है। यह भावना आदिम काल से आज की सभ्य जात के विचारों तक बनी हुई है। धर्म की दृष्टि से यह भी ठीक प्रतीत होता है कि भावी जीवन केवल जीवन रक्षण ही नहीं पार्थिव जीवन से उच्चतर और वांछनीय जीवन है। मनुष्य अपने लौकिक जीवन में दुख की घड़ियां व्यतीत करते हुए भी अपने व्यक्तित्व के अंत में निहित सर्वोत्तम गुणों की प्राप्ति की कामना करता है और उसकी पूर्ति के लिए भविष्य के जीवन की आशा में लगा रहता है। पृष्ठ संख्या 239। अतः अमरता का अर्थ केवल भविष्य में जीवन का बचा रहना ही नहीं है, वरन उच्चतर और परम जीवन है, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति होती है। ईश्वरवादियों के अनुसार ईश्वर साक्षात्कार आवश्यक है। भारतीय मत के अनुसार मोक्ष ही परम लक्ष्य है। मोक्ष व्यक्तित्व का विनाश नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता है। सारांश में अमरता का अर्थ है मृत्यु के पश्चात भी जीवन का सातत्य बना रहना। परंतु विचारकों के अनुसार अमरता के कई अर्थ लगाए जाते हैं, जिस पर विचार करना आवश्यक है। अगला शीर्षक है अमरता का स्वरूप एवं प्रकार। अमरता को अनेक अर्थों में ग्रहण करने के कारण उसके एक निश्चित स्वरूप को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। यद्यपि अमरता का सामान्य अर्थ यही लिया जाता है कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन बना रहता है, फिर भी विभिन्न धर्मों में प्रचलित धारणाओं के अनुसार अमरता की विभिन्न धारणाएं प्रचलित हैं। हमें अमरता के स्वरूप पर विचार करते समय धारणा के आधार पर ही निर्णय लेना होगा। उदाहरण के रूप में, पहला, मूल्यवादी मूल्यों के रूप में जीवन की अमरता स्वीकार करते हैं। दूसरा, निर्वाण या मोक्षवादी जीव और ब्रह्म की एकाकारता के रूप में जीवन की अमरता उसी प्रकार समझते हैं जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र में समाकर अमर हो जाती है। तीसरा, ईश्वरवादी के अनुसार शरीर नाशवान अवश्य है, परंतु आत्मा अमर है। ईसाई धर्म के विचारकों के अनुसार अमरत्व चरित्र एवं शुभाचरण पर निर्भर है। जो व्यक्ति शुभ करता है उसे शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। यदि हम ईश्वरवादी दृष्टिकोण से अमरता के स्वरूप पर विचार करें तो स्पष्ट है कि अमरता अनवरत रूप में कालगत और कालातीत अवस्था में व्यक्तित्व का अस्थायित्व है। अमरता के निम्नलिखित लक्षण व्यक्त किए जा सकते हैं। इसमें पहला है, कालातीत जीवन में भी व्यक्तित्व का बना रहना। मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति के आदर्श विचार चिंतन मन आदि पूर्व जीवन की भांति ही जैसे के तैसे बने रहें, उसका पूर्व जीवन बदल जाए व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता। व्यक्ति अपने पूर्व जीवन की समस्याओं तथा घटनाओं को और भी स्पष्ट रूप में पाना चाहता है। दूसरा है, अमर जीवन सर्वकालीन हो। ईश्वरवादी दृष्टिकोण से व्यक्ति काल रहित अमरता नहीं मानता, जैसा कि निर्वाण या मोक्ष की अवस्था में होता है। वह अपने पूर्व जीवन की समस्त घटनाओं को पूर्ववत ही घटित होते हुए देखना चाहता है। ईश्वर जब सर्वकालीन होता है तो भक्त भी ईश्वर के सानिध्य के लिए सर्वकालीन होना चाहता है। इसलिए अमरता सर्वकालीन मानी जाती है। अब बिंदु तीसरा है, आदर्शों की परिपूर्णता का अवसर। अमरता का अर्थ केवल जीवन का चलते रहना ही नहीं है, बल्कि अगला जीवन व्यक्ति को इसीलिए मिले कि वह अपने आदर्शों और जीवन मूल्यों को पूर्ण कर सके, अन्यथा जीवन उद्देश्यहीन हो जाएगा। जीवन काल थोड़ा होता है। कांट के अनुसार अगला जीवन आदर्शों की पूर्णता के लिए आवश्यक है, इसलिए अमरता आदर्शों की परिपूर्णता का अवसर है। उपर्युक्त सभी लक्षण केवल ईश्वरवादी दृष्टिकोण के अनुसार ही व्यक्त किए गए हैं, परंतु जैसा कि हमने देखा है कि अमरता के अनेक अर्थ लगाए जाते हैं, इसीलिए अमरता के विभिन्न प्रकारों पर दृष्टिपात करना होगा, जिससे अमरता का संपूर्ण स्वरूप हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए। पृष्ठ संख्या 240। अब अगला शीर्षक है अमरता के प्रकार। इसके अंतर्गत पहला है व्यक्तित्व पूर्ण अमरता। सामान्य रूप से विचारकों ने दो प्रकार की अमरता को स्वीकार किया है, व्यक्तित्व पूर्ण एवं व्यक्तित्वहीन। यदि अमरता का अर्थ मृत्यु के पश्चात जीवन सातत्य आत्मचेतना एवं एक रूपता स्वीकार किया जाए तो व्यक्तित्व का बना रहना अनिवार्य है। ऐसी अमरता ही व्यक्तिगत अमरता है। इसमें आत्मा मृत्यु के उपरांत उस तरह जीवित नहीं रहती जिस तरह बूंद समुद्र में विलीन होकर रहती है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि मृत्योपरांत जीवन को व्यक्तित्वपूर्ण मान भी लें तो क्या आत्मा शरीर सहित रहती है या शरीर विहीन? भारतीय विचारक आत्मा को शरीर विहीन रूप में ही मानते हैं। गीता के अनुसार आत्मा नित्य, शाश्वत और अमर है। इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता तथा वायु इसका शोषण नहीं कर सकता। शरीर का नाश भले हो जाए, परंतु आत्मा सनातन, पुरातन एवं नित्य है। अन्य मतों में शरीर विहीन आत्मा की धारणा कम प्रचलित है। ईसाई तथा मुसलमान मत में मृत्यु के पश्चात भी सदेह आत्मा को स्वीकार करते हैं। न्याय दिवस पर मृत व्यक्ति सशरीर ईश्वर के समक्ष उपस्थित होते हैं और उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार उन्हें स्वर्ग या एक मिलता है। ईसाई मत में इसे पुनरुत्थानात्मक जीवन कहते हैं। इसके बाद मृत्यु नहीं होती। सारांश यह है कि व्यक्तित्वपूर्ण अमरता सशरीर और शरीर विहीन दोनों में मानी जाती है। आत्मा का विनाश किसी भी अवस्था में नहीं होता, अर्थात व्यक्ति अमर है। दूसरा है व्यक्तित्व विहीन अमरता। दूसरे प्रकार की अमरता व्यक्तित्व विहीन अमरता है। अनिश्वरवादी एवं अद्वैतवादी विचारकों में यह धारणा विशेष रूप से प्रचलित है। इस प्रकार की अमरता निम्नलिखित रूपों में मानी जाती है। इसमें बिंदु अ है सांस्कृतिक अमरता। मृत्यु के बाद यद्यपि न शरीर रहता है और न तो व्यक्ति की चेतना ही रहती है, फिर भी संसार में उसके कार्यों विचारों का अमिट प्रभाव तो बना रहता है। इस रूप में वह अमर कहा जा सकता है। शीर्षक है आलोचना। इस प्रकार की अमरता वास्तविक अमरता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मानव संस्कृति जब तक काल कवलित नहीं होगी तभी तक व्यक्ति के विचारों और कार्यों का प्रभाव बना रह सकता है। इसके बाद तो अमिट प्रभाव का प्रश्न ही नहीं होता। दूसरे विश्व के कुछ ही व्यक्तियों के कार्यों और विचारों का ही प्रभाव तो संस्कृति पर पड़ सकता है। अब बिंदु ब है सामाजिक अमरता। इसके अनुसार बड़े बड़े समाज सुधारक, लोकनायक तथा महापुरुष अपने सामाजिक कार्यों द्वारा मृत्यु के पश्चात भी समाज में अमर बने रहते हैं। पृष्ठ संख्या 241। उनके कार्यों तथा आदर्शपूर्ण जीवन को समाज भूल नहीं सकता, क्योंकि उनके प्रभाव से समाज में परिवर्तन होता रहता है। बुद्ध, कार्ल मार्क्स और गांधी का प्रभाव समाज पर अमिट रूप में बना रहेगा। जब तक समाज रहेगा तब तक समाज के विचारों में ऐसे महान व्यक्ति भी अमर बने रहेंगे। यही है सामाजिक अमरता। अब शीर्षक है आलोचना। इस प्रकार की अमरता ईश्वर भक्त के लिए संतोषजनक नहीं है, क्योंकि वह तो ईश्वर से प्रेम करने के कारण ईश्वर के सतत सानिध्य में ही रहना चाहता है। उसे तो व्यक्तित्वपूर्ण अमरता ही स्वीकार्य है। मॉन्टेग्यू आदि विचारकों के अनुसार तो व्यक्तिगत अमरता ही जीवन का लक्ष्य है। दूसरे सामाजिक अमरता सभी को प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सभी न तो महान होते हैं और न तो समाज सुधारक या लोकनायक ही होते हैं, जबकि अमरता मानव जाति का लक्ष्य है। तीसरे, इस प्रकार की अमरता चिरकालीन तो कही नहीं जा सकती, फिर अमरता का अर्थ पूर्ण नहीं होता। अब बिंदु स है शारीरिक अमरता। इस प्रकार की अमरता को संतति मूलक या जैव अमरता भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति का अपना जीवन तो समाप्त हो जाता है, परंतु वह अपनी संतान के माध्यम से जीवित रहता है। इस दृष्टि से हम देखते भी हैं कि व्यक्ति एक पीढ़ी से आने वाली अगली पीढ़ियों तक अमर बना रहता है। आलोचना। इस प्रकार की अमरता से भी व्यक्तिगत अमरता का लक्ष्य तो पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यक्ति और उसकी संतान में पूर्ण समानता तो नहीं पाई जाती। व्यक्तिगत अमरता तभी पूर्ण कही जा सकती है जब व्यक्ति अपने को सभी प्रकार से अपनी संतान में संरक्षित पाए। दूसरे ऐसे व्यक्ति जो अविवाहित या निसंतान हैं, उन्हें शारीरिक अमरता किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? बिंदु द है अद्वैतवादी अमरता। व्यक्तित्व विहीन अमरता का एक रूप अद्वैतवादी अमरता भी है, क्योंकि इसमें भी व्यक्तित्व का विलीनीकरण एक परम सत्ता में हो जाता है। इस प्रकार की अमरता उसी प्रकार मानी जाती है जिस तरह बूंदे या नदियां समुद्र में विलीन होकर अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। व्यक्ति द्वैत का अनुभव नहीं करता, बल्कि परम सत्ता में मिलकर अद्वैत हो जाता है। आलोचना। ईश्वरवादी दृष्टिकोण से इस प्रकार की अमरता ईश्वर भक्त के लिए स्वीकार्य नहीं है। भक्त ईश्वर भक्ति का रसास्वादन लेना चाहता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, भक्त स्वतः चीनी नहीं बनना चाहता, बल्कि चीनी का स्वाद लेना चाहता है। बिंदु यह है निर्वाणवादी अमरता। कहा जाता है कि निर्वाण की अवस्था में अहम का अस्तित्व नहीं रहता। जब अहम भाव विलुप्त हो जाता है, तब व्यक्तित्व का भी विनाश हो जाता है। इसीलिए यह व्यक्तित्वहीन अमरता है। प्रश्न है, निर्वाण मूलक व्यक्तित्वहीन अमरता का क्या स्वरूप है? इसके उत्तर में डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार कहा जा सकता है कि इस अवस्था में अहम भाव के विनाश के साथ व्यक्ति परम सत्ता बन जाता है, तत्त्वमसी का रूप ले लेता है। यदि निर्वाण का अर्थ जीवन की अपूर्णता से लिया जाए, तो जिसका जीवन पूर्ण है वह अमर की संज्ञा से अवहित होता है। पृष्ठ संख्या 242, शीर्षक है आलोचना। प्रथम तो निर्वाण का कोई निश्चित अर्थ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह अवस्था प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष से परे की अवस्था है। दूसरे, जीवन की पूर्णता का कोई निश्चित अर्थ नहीं प्रकट किया जा सकता। यदि मूल्यात्मक अर्थ में जीवन मूल्यों की पूर्ण प्राप्ति के अर्थ में अमरता कहा जाए, तो इसे निर्वाण की अवस्था तो नहीं कहा जा सकता। तीसरे, ईश्वरवादी दृष्टि से इस प्रकार की अमरता ईश्वर भक्त को मान्य नहीं है। अब अगला शीर्षक है मानव में अमरता की इच्छा। इसमें पहला बिंदु है, अमरता की इच्छा अस्थाई एवं व्यापक है। कुछ विचारकों के अनुसार मानव में अमरता की इच्छा सार्वभौमिक मानी जाती है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, तो अमरता की इच्छा आदिम धर्म से लेकर आध्यात्मिक धर्म तक विभिन्न रूपों में मनुष्य में देखी जाती है। प्रोफेसर गैलवे ने ठीक ही लिखा है, धर्मों के विकास के साथ ही साथ अमरता की इच्छा का महत्व भी बढ़ता गया है। इसका क्षेत्र प्रारंभिक जीववादी धर्म से लेकर अध्यात्मवादी धर्म तक देखा जा सकता है। यद्यपि यह हम नहीं कह सकते कि अमरता में विश्वास सार्वभौमिक रूप से धर्म में है ही, क्योंकि बहुत से धर्म इसके बिना भी रहे हैं। फिर भी अमरता की इच्छा अस्थाई एवं व्यापक रूप में देखी जाती है। आधुनिक युग में तो अमरता की इच्छा इतनी व्यापक मानी जाती है कि कुछ विचारक यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने वालों से अधिक आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाले हैं। अब बिंदु दूसरा है, मानव में अमरता की इच्छा स्वाभाविक एवं प्रिय है। मनुष्य स्वभाव से ही अपने वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने के प्रयत्न में लगा रहता है और चाहता है कि उसका जीवन दुखों से रिक्त रहे। यद्यपि जीवन दुखों से खाली कभी नहीं रहता, फिर भी मनुष्य इसी आशा में रहता है कि उसका जीवन सुखमय बना रहे और मरणोत्तर जीवन भी उन्हीं सुखों से भरा रहे। जीवन के विभिन्न मृद संबंधों को स्वभावतः वह छोड़ना नहीं चाहता। जीवन और जीवन संबंधों का अस्थायित्व ही अमरता है। इस अमरता की इच्छा उसको सर्वप्रिय है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अमरता की इच्छा मानव जीवन के केवल धर्म का ही आधार नहीं है, वरन जीवन को जीने के प्रति एक समुचित दृष्टिकोण है। यदि मनुष्य इस इच्छा का त्याग करता है तो जीवन का त्याग ही समझना चाहिए। इस प्रकार जीवन त्याग का अर्थ अपने अस्तित्व को समाप्त करना है। दूसरे अर्थों में अमरता की इच्छा जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करना है। अब बिंदु तीसरा है, लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में अमरता की इच्छा की उत्पत्ति और विकास। यदि हम मानव में अमरता की इच्छा की उत्पत्ति पर ध्यान दे तो यह स्पष्ट होता है कि यह इच्छा मानव में आदिकाल से ही है। आदिम धर्मों में मनुष्य अपने स्वप्न की व्याख्या द्वारा इस इच्छा का पुष्टिकरण करता था, क्योंकि स्वप्न में वह अपने पूर्वजों को देखा करता था। यही नहीं, जीववाद के अनुसार पूर्वजों की आत्मा मृत्यु के पश्चात भी भूत प्रेत के रूप में जीवित रहती थी और इधर उधर विचरण करती रहती थी। पृष्ठ संख्या 243। आदिम जात के लोग उन पूर्वजों की पूजा इसीलिए करते थे कि उनको उन आत्माओं से प्रेम था। गैलवे का कथन है कि आदिम मनुष्य उन प्रेतात्माओं को भय के कारण मानते थे, न कि प्यार के कारण। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि अमरता की भावना की उत्पत्ति का सूत्रपात यहीं से हुआ है। यही भावना आधुनिक युग में दूसरे रूप में उत्पन्न और विकसित हुई कही जा सकती है। मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, परंतु उसका जीवन अल्पकालीन है। थोड़े समय में वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। निश्चित है कि वह मरणोत्तर जीवन की इच्छा करता है, जिसमें अपने अपूर्ण लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा। कांट ने इसीलिए नैतिक अपूर्णता की पूर्णता के लिए भविष्य जीवन की ओर इंगित किया है। मनुष्य इसी में संतोष करता है कि भले ही मृत्यु में शरीर का नाश हो जाता है, परंतु आत्मा तो अमर है। वह पुनः दूसरा शरीर धारण करके अपने अपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति कर लेगा। ईश्वरवादी इसके लिए ईश्वर की कृपा का आह्वान भी करता है। इस रूप में अमरता की इच्छा का विकास माना जा सकता है। बिंदु चौथा है, मानव में अमरता की इच्छा का आधार नैतिकता है। मानव में अमरता की इच्छा विश्व में नैतिकता के कारण उत्पन्न हुई है। धर्म मनोवैज्ञानिक सैल्वी ने ठीक ही कहा है कि यदि यह एक नैतिक विश्व है तो मानव को यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि विश्व का निर्माण नाशवान जीवन से कहीं अधिक बड़े पैमाने के आधार पर किया गया है। कालगत जीवन ही सब कुछ है। मानव की नैतिक चेतना ही उसमें अमरता की इच्छा उत्पन्न करती है। हिंदू धर्म में कर्म का नियम इसी बात को चरितार्थ करता है। मनुष्य नैतिक जीवन इसलिए व्यतीत करना चाहता है कि उसका जीवन सुखमय बने, परंतु देखा यही जाता है कि नैतिक व्यक्ति दुखी रहता है और इसके विपरीत अनैतिक व्यक्ति सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी विषमता देखकर मनुष्य में यह भावना उत्पन्न होती है कि वर्तमान जीवन ही सब कुछ नहीं है। उसको आशा होती है कि मरणोत्तर जीवन भी होगा, जिसमें उसके शुभ कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। अभी जो कष्ट मिल रहा है पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। यही कारण है कि मानव नैतिक ही बना रहता है। अतः नैतिक चेतना के कारण ही मनुष्य में अमरता की इच्छा को सबल मिलता है। साथ ही अमरता की इच्छा से नैतिक जीवन को बल मिलता है। बिंदु पांचवा है, भव भय से बचने तथा कर्म करने की प्रेरणा के कारण अमरता की इच्छा। संसार में अनेक प्रकार के कष्ट हैं जो मनुष्य को भयभीत किए रहते हैं। विभिन्न कष्टों को ही भव भय कहते हैं, परंतु सबसे बड़ा भय मनुष्य को मृत्यु का ही रहता है। वह मृत्यु चाहता नहीं, वह चाहता है लोग उसे सतत याद रखें, उसका नामो निशान संसार से मिटे नहीं। अपने को सदैव बनाए रखने के लिए वह अमरता की इच्छा करता है। यह भावना उसको सुखद प्रतीत होती है। मृत्यु के भय के कारण ही वह न तो कर्म में प्रवृत्त होता है और न ही जीवन के प्रति आशावान ही होता है। परंतु यदि मनुष्य निष्कर्मण्य और निराश हो जाए तो संभवतः एक दिन भी जीवन चलना असंभव हो जाए। अतः इनसे बचने के लिए वह अमरता की इच्छा करता है। वह विचार करता है कि मृत्युपरांत मेरा अस्तित्व अवश्य रहेगा। शरीर के अंत होने से आत्मा का अंत नहीं होगा। इस भावना से उसे कर्म की प्रेरणा मिलती है और जीवन के प्रति आस्था बढ़ती है। पृष्ठ संख्या 244, शीर्षक है अमरता के प्रमाण। मानव में अमरता की इच्छा से अमरता के पक्ष में हमें विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अमरता को सिद्ध करने के लिए अनेक युक्तियां दार्शनिकों ने दी है, जिनको प्रमाण के रूप में कहा जा सकता है। भौतिकवादियों के अनुसार तो चेतना से युक्त देह का नाम ही आत्मा है, इसलिए उनके लिए अमरता का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके विपरीत जो आत्मा को अमर मानते हैं वे दार्शनिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, अनुसंधान संबंधी एवं अन्य तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत अब शीर्षक है बिंदु अ, दार्शनिक तर्क। दार्शनिक तर्क को तार्किक प्रमाण भी कहा जाता है। ऐसे प्रमाणों में प्लेटो के तर्क विशेष रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें बिंदु पहला है ज्ञान संबंधी तर्क। प्लेटो ने इस तर्क को विशेष रूप से स्पष्ट करते हुए कहा है कि आत्मा ज्ञाता है और वही ज्ञान का आधार है। आत्मा की तरह ज्ञान भी देश और काल से अतीत तथा शाश्वत है। प्लेटो का कहना है कि आत्मा इस शाश्वत ज्ञान को अनुभव से नहीं प्राप्त करता, क्योंकि अनुभव देश और काल की सीमाओं से सीमित रहता है। ज्ञान तो आत्मा में ही निहित है और आत्मा अपने भीतर से ही ज्ञान प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा अपने अंदर निहित ज्ञान का ही स्मरण करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा इस जन्म के पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा। यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर अपना अस्तित्व कायम रखता है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा अमर और शाश्वत है। बिंदु दूसरा है तत्वशास्त्रीय तर्क। प्लेटो और डेकार्त आदि दार्शनिकों का यह तर्क है कि आत्मा सरल आध्यात्मिक द्रव्य है। सरल होने के कारण वह अमिश्रित है, अर्थात यौगिक नहीं है। नाशवान वही पदार्थ होता है जो यौगिक होता है और जिसका विश्लेषण किया जा सकता है, क्योंकि विश्लेषण को ही नाश कहा जा सकता है। अतः जब आत्मा सरल और अयौगिक है तो उसका विनाश कैसा? अतः आत्मा अमर है। बिंदु तीसरा है द्रव्य विरोधी स्वरूप में भाग नहीं लेता। प्लेटो का तर्क है कि आत्मा का स्वरूप है जीवन में भाग लेना। मृत्यु जीवन विरोधी है, अतः आत्मा नित्य और शाश्वत है। मृत्यु में भाग लेना उसके स्वरूप के ही विपरीत है। चौथा है डेकार्त के अनुसार आत्मा एक चेतन द्रव्य है। डेकार्त के अनुसार आत्मा एक द्रव्य है और उनका मूल गुण चैतन्य है। चूंकि द्रव्य का विनाश नहीं होता, अतः आत्मा भी अमर अविनाशी तथा नित्य है। पांचवा है लाइबनीज के अनुसार मोनाड आत्मा है। लाइबनीज के अनुसार मोनाड ही परम आध्यात्मिक सत्ता है। यही आत्मा है। चेतना के विकास क्रम के अनुसार अनेक मोनाड एक तारतम्य में रहते हैं। सर्वोच्च मोनाड ईश्वर है। मोनाड का तारतम्य कहीं से खंडित नहीं हो सकता। खंडित होने का अर्थ मोनाड की मृत्यु है। यदि मोनाड की मृत्यु मान ली जाए तो लाइबनीज के मत की संगतता समाप्त हो जाती है। अतः मोनाड जो आत्मा है अविनाशी है, अमर और शाश्वत है। बिंदु छठवां है मैक्टागार्ट के अनुसार निरपेक्ष या एब्सोल्यूट ही परम सत्ता है। निरपेक्ष या परम सत्ता की तुलना समाज से की जा सकती है। पृष्ठ संख्या 245। समाज के अनेक सदस्यों की तरह निरपेक्ष में अनेक आत्माओं को माना जाता है। ये आत्माएं अपरिवर्तनशील और एक रस है। इनमें जब परिवर्तन संभव नहीं तो इनका विनाश भी संभव नहीं है। अतः आत्मा अमर है। अब अगला शीर्षक है बिंदु ब नैतिक प्रमाण। इसमें पहला बिंदु है मानव में नैतिक चेतना। मानव में नैतिक चेतना के आधार पर अमरत्व के सबसे प्रबल समर्थक कांट माने जाते हैं। कांट के अनुसार नैतिक चेतना में व्यापकता है। मानव में नैतिक संकल्प और बाध्यता को निश्चित रूप से स्वीकार किया जा सकता है। यदि यह सत्य है तो नैतिक लक्ष्य की प्राप्ति आवश्यक है। नैतिकता एक आदर्श है। इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए मानव का जीवन काल अल्प है। परंतु यदि नैतिकता का आदर्श प्राप्त होता ही है तो आत्मा को अवश्य ही अमर होना चाहिए। बिंदु दूसरा है निरंतर प्रगति की संभावना। नैतिक आदर्शों की प्राप्ति में ही निरंतर प्रगति की संभावना निहित है। यदि निरंतर प्रगति संभव है तो आत्मा का अमरत्व भी अनिवार्य है, क्योंकि बिना अमरता के प्रगति संभव नहीं है। तीसरा है न्याय की दृष्टि से अमरता आवश्यक है। न्यायतः व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होना चाहिए। नैतिक व्यक्ति को अपने शुभ कार्यों का पुरस्कार मिलना चाहिए और अनैतिक व्यक्ति को उसके दुष्कर्मों का दंड प्राप्त होना चाहिए। परंतु देखने में यह आता है कि जो व्यक्ति अनैतिक है वे सुखी और संपन्न हैं, तथा इसके विपरीत नैतिक व्यक्ति दुखी और पीड़ित है। वस्तुतः यह तो न्याय के विपरीत है, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। अतः इतना संकेत तो अवश्य मिलता है कि यही जीवन सब कुछ नहीं है। अवश्य अगले जन्म में मनुष्य को अपने कर्मों का फल प्राप्त होगा। अतः आत्मा अमर है। यदि आत्मा अमर नहीं है तो लोगों को अपने कर्मों का फल अगले जीवन में कैसे मिलेगा? यद्यपि प्रोफेसर प्रिंगल पेटिसन अपनी पुस्तक दी आइडिया ऑफ इमॉर्टेलिटी में सर्वोच्च नैतिकता की धारणा का दंड और पुरस्कार की विचारधारा से स्वतंत्र मानते हैं, तथापि सेल्वी ने ठीक ही कहा है कि अमरता की आशा एक नैतिक उत्प्रेरक और साधन है। नश्वर जीवन की बहुत सी अपूर्णताओं तथा अन्यायों को ठीक करती है। अब अगला शीर्षक है बिंदु स मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी प्रमाण। इसमें पहला है पुनर्जन्म। इस वैज्ञानिक युग में भी लगभग समस्त प्रगतिशील देशों में मनोवैज्ञानिक ढंग से आध्यात्मिक खोजें जारी हैं, जिनसे अमरता के सिद्धांत का समर्थन होता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे समक्ष उपस्थित की जा रही हैं, जिनसे हम पुनर्जन्म को मानने के लिए बाध्य हैं। डॉक्टर स्टेवेंसन ने जो पर्याप्त समय तक मेडिकल विभाग में उच्च पद पर कार्य कर चुके हैं, पुनर्जन्म के विषय में अन्वेषण करके एक पुस्तक 20 केसेस ऑफ द इनकॉर्नेशन लिखी। इसमें 13 उदाहरण विभिन्न देशों के हैं और शेष 7 भारत के हैं। उनके अनुसार पुनर्जन्म की बात सर्वांश रूप में सत्य सिद्ध होती है। दूसरा है मृत व्यक्ति की आत्माओं से बातचीत। इसके लिए एक ऐसी विधि निकाली गई है जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति को माध्यम बनाकर मृत व्यक्ति की आत्मा से बातचीत की जाती है। पृष्ठ संख्या 246। तीसरा है बालकों के संस्मरण। खोजों तथा समाचार पत्रों द्वारा यह मालूम होता है कि छोटे छोटे बालक अपने पूर्व जन्म की बातें सुनाते हैं जिनकी सत्यता जांच करने पर ज्ञात होती है। चौथा है विशिष्ट कार्यों की निपुणता। इस जन्म में बिना शिक्षा प्राप्त किए ही बहुत से छोटे बालक गणित या संगीत में इतने निपुण देखे जाते हैं जिनको देखकर आश्चर्य होता है कि इसने कैसे और कब इस कार्य में इतनी योग्यता और निपुणता प्राप्त कर ली। इन उदाहरणों से तो यह सिद्ध होता है कि अवश्य ही पूर्व जन्म के संस्कार इतने प्रबल हैं जिसके कारण वर्तमान जन्म में वह बिना शिक्षा प्राप्त किए ही निपुण हो गया। इससे भी आत्मा की अमरता ही सिद्ध होती है। अब अगला शीर्षक है द अन्य प्रमाण। इसमें पहला है शक्ति संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस नियम के अनुसार शक्ति का कभी विनाश नहीं होता, उसका रूप भले ही परिवर्तित हो जाता है, आत्मशक्ति भी इस नियम के अंतर्गत है। यदि यह नियम सर्वमान्य है तो निश्चय ही आत्मा का नाश नहीं होता। यदि यह कहा जाए कि यह नियम केवल भौतिक शक्ति के लिए ही लागू होगा, आत्मा तो आध्यात्मिक शक्ति है, तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि आत्मशक्ति भौतिक शक्ति से नितांत अलग और स्वतंत्र है। अर्थात भौतिक शरीर के साथ आत्मा का नाश संभव ही नहीं है, अतः आत्मा अमर है। बिंदु दूसरा है मूल्यों की प्राप्ति संबंधी तर्क। मानव जीवन के प्रमुख तीन आदर्श सत्य, शिव और सुंदर हैं। ये आदर्श अनंत हैं। इन मूल्यों को प्राप्त करने का स्वाभाविक आग्रह मनुष्य की आत्मा में है, परंतु इस अनंत आदर्शों को मनुष्य अपने सीमित जीवन में नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए मनुष्य का जीवन भी अनंत होना चाहिए, अन्यथा आदर्श झूठे सिद्ध होंगे। चूंकि आदर्श प्राप्य हैं, इसके लिए आत्मा में स्वाभाविक आग्रह भी है, इसलिए आत्मा अवश्य अनंत और अमर है। तीसरा है आत्मा के द्वारा ही भौतिक वस्तुओं का निर्देशन होता है। इतना तो निश्चित है कि एक नश्वर पदार्थ दूसरे पदार्थ को निर्देशित नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यक है कि वस्तुओं का निर्देशन करने वाला पदार्थ अनंत और अविनाशी हो। आत्मा अमर और अनंत है, वही भौतिक नाशवान पदार्थों का निर्देशन करता है। चौथा है अमरत्व का विश्वास हमारी भावना में है। विलियम जेम्स का कहना है कि अमरता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अमरत्व का विश्वास हमारी भावना में अंतर्निहित है। जेम्स का कहना सत्य प्रतीत होता है कि हमारी भावनाओं के कारण ही अनेकों विश्वास किसी विषय के बारे में बनते हैं। यदि भावनाएं समाप्त हो जाएं तो हमें संशयवाद की ही शरण लेनी पड़ेगी और जीवन दुर्लभ हो जाएगा। आत्मा की अमरता को भावना के कारण विश्वास के रूप में मानना ही होगा। इस तर्क के विरोध में इतना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि भावना का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है और हमारा जीवन अधिकांश रूप से इसी से परिचालित होता रहता है, फिर भी बौद्धिकता से शून्य कोरी भावना का स्थान सर्वोपरि मानना उचित नहीं है। हम भावना में आकर असंभव की भी संभावना करने लग सकते हैं, तो क्या फिर असंभव संभव हो सकता है? पृष्ठ संख्या 247। पांचवा है मूल प्रवृत्तियों से संबंधित तर्क। उदाहरण के लिए क्षुधा की मूल प्रवृत्ति को लें। शिशु जन्म लेते ही क्षुधा की तृप्ति माँ के स्तनपान से करता है। पशु और मुर्गी के बच्चे भी अपनी क्षुधा तृप्ति बिना सीखे ही स्वयं कर लेते हैं। प्रश्न है, इनको कौन सिखलाता है? इसका उत्तर पूर्व जन्म के संस्कारों से ही दिया जा सकता है। पूर्व जन्म में क्षुधा तृप्ति का उपाय सीखा है, वे संस्कार के रूप में विद्यमान रहते हैं। उन्हीं संस्कारों के फलस्वरूप वर्तमान जन्म में भी वे इस प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्तियों को भी उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, जैसे भय, हर्ष आदि। इन व्यवहारों का प्रदर्शन भी पूर्व संस्कार का ही फल ज्ञात होता है। अतः सिद्ध है कि आत्मा अमर है और एक जन्म के पश्चात दूसरे जन्म में आत्मा के संस्कार काम करते हैं। यह युक्ति भी सफल नहीं कही जा सकती। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल आज जीव के समस्त व्यवहारों की व्याख्या मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के आधार पर ही करते हैं। इनको आध्यात्मिक अर्थ में ग्रहण करना उनको अभिष्ट नहीं है। अब अगला शीर्षक है आलोचना अथवा अमरत्व के विरुद्ध तर्क। इसमें पहला है, जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत भी होता है। इस प्राकृतिक नियम के आधार पर कुछ लोग अमरता का खंडन करते हैं। उनके अनुसार यदि आत्मा का प्रारंभ होता है तो निश्चय ही उसका अंत होना चाहिए। निराकरण। यह तर्क निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि आत्मा एक आध्यात्मिक सत्ता है। यह भौतिक पदार्थों से नितांत भिन्न है। इसका न प्रारंभ होता है न अंत। यह नियम आत्म तत्व पर लागू नहीं होता। भौतिक पदार्थ ही इस नियम के अंतर्गत आते हैं। आत्मा तो अनादि और अनंत है। दूसरा है, आत्मा के अमरत्व में वैज्ञानिकों का विश्वास। विज्ञान के आधार पर आत्मा का अमरत्व प्रमाणित नहीं किया जा सकता, अतः वैज्ञानिक आत्मा की अमरता स्वीकार नहीं करते। अब निराकरण। इस तर्क के विरोध में सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि अमरता का प्रश्न वैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र के परे है। यदि वैज्ञानिक आत्मा के विषय में वैज्ञानिक खोज प्रस्तुत नहीं कर सकते तो इसके विषय में उनका कोई दिया हुआ अंतिम निर्णय स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न धर्म दर्शन का विषय है, जो वैज्ञानिक विधियों तथा अध्ययन प्रणाली के बिल्कुल विरुद्ध है। तीसरा है, अमरत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता। कुछ आलोचकों का कहना है कि अमरता का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे वास्तविक या सत्य नहीं माना जा सकता है। निराकरण। सभी ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही नहीं प्राप्त होते, ज्ञान के अन्य साधन भी हैं। अमरत्व का विषय आध्यात्मिक है, इसका ज्ञान आत्मानुभूति द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त अनुमान द्वारा भी अमरत्व को प्रमाणित किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 248, बिंदु चौथा। यदि आत्मा को अमर माने तो विश्व में अस्थानाभाव हो जाएगा। अमरत्व के खंडन में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि यदि आत्माएं अमर होंगी तो उनको विश्व में रहने का स्थान नहीं रह जाएगा, अतः आत्मा अमर नहीं है। निराकरण। इस तर्क के विरुद्ध कहा जा सकता है कि आत्मा एक आध्यात्मिक सत्ता है, वह भौतिक वस्तुओं की तरह स्थान नहीं घेरता, वे देश कालातीत हैं। जिस प्रकार विचार मस्तिष्क में बिना स्थान घेरे रहते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी विश्व में बिना स्थान घेरे रहती हैं। अब पांचवा है, अमरता की भावना स्वार्थ पर आधारित होने के कारण मिथ्या है। कुछ मानवतावादी विचारक अमरता की इच्छा को स्वार्थ मूलक कहते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ में आकर अमर होना चाहता है। इस भावना में कोई वास्तविकता नहीं है, यह नितांत मिथ्या और भ्रमपूर्ण है। शीर्षक है निराकरण। यदि वास्तविकता की ओर दृष्टिपात किया जाए तो मानव की समस्त इच्छाएं स्वार्थपरक होती हैं और मानवतावादी की इच्छा भी स्वार्थ मूलक होती है, तो क्या उनके सभी मत भ्रम या मिथ्या हैं? फिर मरणोपरांत जीवन संभव है या नहीं, इसका निर्णय स्वार्थ या परार्थ भावना के आधार पर नहीं दिया जा सकता। फिर परार्थवादी तो जीव मात्र की अमरता को स्वीकार करते हैं, अतः अमरता मिथ्या नहीं है। अब अगला शीर्षक है, अमरता के धार्मिक आधार। इसमें पहला बिंदु है, धर्म में आत्मा पूर्व मान्यता के रूप में। सर्वप्रथम अमरता के धार्मिक आधार के रूप में यह कहा जा सकता है कि धार्मिक व्यक्ति जीवन के प्रति आस्थावान होता है, उसकी दृष्टि में अमरता पूर्व कल्पित है, मृत्यु उसके लिए चिंतनीय नहीं है। आस्थाविहीन व्यक्ति ही मृत्यु के विषय में चिंतित और व्यग्र रहता है। धार्मिक व्यक्ति दैवी कृपा करुणा तथा प्रेम में पहले से ही विश्वास रखता है। यही कारण है कि महान संत और पैगंबर अमरता को एक समस्या के रूप में न मानकर उसके विषय में उतना चिंतन न करके ईश्वरीय कृपा और भक्त की प्राप्ति का उपक्रम करते हैं। दूसरा है, अमरता का धार्मिक आधार ईश्वर है। आत्मा और ईश्वर धर्म के तात्विक आधार हैं। अतः आत्मा की अमरता धर्म पर ही आधारित है। विशेष रूप से अमरता का आधार ईश्वर ही है। ईश्वर जगत का नियंता, पालनकर्ता और सर्वस्व माना जाता है। इसीलिए धार्मिक व्यक्ति ईश्वर को सर्वस्व समर्पित करके आश्वस्त हो जाता है। उसकी इच्छा को ही सर्वोपरि मानता है। ईश्वरी कृपा में विश्वास के अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान उसे प्राप्त करने योग्य नहीं है। धार्मिक व्यक्ति को बोध रहता है कि यदि ईश्वर शाश्वत चिरंतन सत्ता है तो भक्त उसी सत्ता का एक अंश होने के कारण नश्वर और निरर्थक कैसे होगा। बिंदु तीसरा है, अमरता के धार्मिक आधार संत और साधक हैं। धर्म के आधार स्तंभ धार्मिक महापुरुष अवतार तथा पैगंबर माने जाते हैं। उन्हें जगत की अनुभूति हुई है। जीवन को सर्वांगीण रूप में उन्होंने समझने का प्रयास किया है। उनको शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति हो चुकी है। अतः उन्हीं के जीवन से अमरता का ज्ञान होता है। विभिन्न युगों में विभिन्न देशों में बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, चैतन्य तथा श्री राम कृष्ण ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए हैं जिनके जीवन और उपदेशों से अमरता स्पष्ट झलकती है। पृष्ठ संख्या 249। बिंदु चौथा है, मानव मूल्य अमरता के धार्मिक आधार के रूप में। मानव मूल्य जीवन के लिए परम आवश्यक है। इन मूल्यों की सुरक्षा धर्म में आवश्यक मानी जाती है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि मानव मूल्यों के संरक्षण के लिए व्यक्ति का अमर होना भी आवश्यक होगा। यदि व्यक्ति अमर नहीं होगा तो शाश्वत मूल्यों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त हमें यह भी मानना होगा कि ईश्वर परम शिव और कल्याणकारी है। यदि ईश्वर में विश्वास नहीं होगा तो मानव मूल्यों की सुरक्षा और धारणा उसके अभाव में संभव नहीं। धर्म में ईश्वर परम मूल्य है। जहां मैक्टागार्ट जैसे विचारक ईश्वर विहीन अमर जीवन की कल्पना करते हैं, वहां टेलर के अनुसार यह स्वीकार किया जा सकता है कि ईश्वर के बिना अमरता की प्रामाणिकता संभव नहीं। अब शीर्षक है निष्कर्ष। इसमें पहला बिंदु है, क्या अमरत्व को असिद्ध किया जा सकता है। अमरत्व के विहत विवेचन से यही सिद्ध होता है कि यह धर्म का मूल आधार है। जब तक धर्म का अस्तित्व रहेगा, अमरता की भावना बनी रहेगी। मानव में अमरता की स्वाभाविक इच्छा से ही यह सिद्ध होता है कि इसके विरोध में चाहे जितने तर्क दिए जाएं, इसे असत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। धर्म के क्षेत्र में अमरता की भावना से बड़ी सहायता मिलती है। देखा गया है कि धर्म के विकास के साथ ही अमरता की भावना का विकास होता गया है। जीववाद से लेकर आधुनिक अध्यात्मवादी धर्म तक इस भावना में कोई कमी नहीं आई। इसके विपक्ष में दिए गए तर्क संगतहीन प्रतीत होते हैं। गैलवे का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि अमरतावादी चाहे अमरता का स्पष्ट रूप से चित्रित भले न कर पाए, फिर भी विज्ञान अमरता की संभावना को असत्य सिद्ध करने में बिल्कुल असमर्थ है। अंत में अमरता के पक्ष में यही कहा जा सकता है कि इसके विपक्ष में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। अब बिंदु दूसरा है, क्या अमरता को तर्कों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है? वैसे तो धर्म का कोई भी विषय तर्कातीत है, धर्म आत्म अनुभूति का विषय है, फिर भी दार्शनिक विवेचन में तर्कों का सहारा लिया जाता है, तर्कों का महत्व भी है। निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए तर्क बहुत सीमा तक सहायक होते हैं। जहाँ तक अमरता का प्रश्न है, इसे तर्कों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अमरता विश्वास पर आधारित है। देखा जाता है कि प्रत्येक धर्म में अमरता के विषय में विश्वास इतने दृढ़ रूप में पाया जाता है कि उसमें संदेह नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अमरता के विपक्ष में कोई निश्चित प्रमाण नहीं दिया जा सकता, उसी प्रकार इसके पक्ष में भी निश्चित प्रमाण नहीं है। जो प्रमाण ईश्वरवादियों की दृष्टि से उचित है, वही अनिश्वरवादियों के अनुसार गलत सिद्ध होते हैं। कांट के नैतिक प्रमाण नैतिक बाध्यता पर आधारित कहे जा सकते हैं और सामान्य अनुभूति को वैज्ञानिकता के आधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता, किंतु प्रमाणों के अभाव में मरणोपरांत जीवन की संभावना को असिद्ध नहीं किया जा सकता। चूंकि अमरता का विश्वास व्यापक रूप में दृष्टिगत होता है, अतः अमरता का आधार तर्क नहीं विश्वास ही है। अध्याय 14 समाप्त।